ओम शांति। आज संख्या एकदम से कम हो गई है, कहाँ चले गए सब लोग? जाने वालों को छोड़ने तो नहीं चले गए? खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को देखकर एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार रामायण कथा कहीं हो रही थी, बहुत भीड़ थी। फिर दूसरे दिन, कई दिनों में होता है ना ये रामायण कथा वगैरह सीरीज होता है, दूसरे दिन थोड़े लोग कम हो गए, तीसरे दिन और कम हो गए, पांचवें दिन, दस, आठवें दिन, लास्ट दिन एक ही आदमी बैठा था पूरी रामायण में। अभी जो कथा कह रहे थे वो सोचा भाई ये बड़ा महान कोई लग रहा है, एक ही बचा है कौन आखिर, पूछे तो सही, क्योंकि या तो मूर्ख होगा जो सब चले गए और ये बच गया, या फिर कोई ऐसा। तो बाद में पता पड़े कि वो हनुमान जी थे, वो लास्ट में वही थे। उनको इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति थी रामायण के प्रति कि अकेले वही बचे रह गए। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं वो हनुमान जी हैं जो अभी उपस्थित हैं। बाकी लोग तो गैर हाजिर हैं, उम्मीद करते हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे, वो भी छोटे हनुमान हैं। अभी आज भट्टी का तीसरा और अंतिम दिन है, और आज जो हमारा शेड्यूल है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। सुबह 9:30 से 10:30 योग था, फिर एक क्लास था, फिर जैसा कि लिखा हुआ है गार्डन में एक छोटी सी पिकनिक और अनुभवों की लेन देन थी। तो शुरू के दो जो हमारे सेशंस थे उसको मर्ज करके एक ही किया गया है, और दोनों को कंबाइंड रूप से हमारी सुमन बहन जी उस सेशन को लेंगी। और आपका बहुत सुंदर विषय है सर्व संबंधों के ऊपर, बाबा से हमारे जो सर्व संबंध हैं वो कैसे निभाए जाएं उसके ऊपर। तो ये एक मिक्स ग्रुप रहेगा, मिक्स क्लास, जिसमें बीच बीच में आपको योग भी कराया जाएगा और इसका जो विषय है उसका स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा। तो सुमन बहन जी 11:45 बजे तक ये क्लास कराएंगी, और उसके बाद हम लोग फिर सीधा गार्डन में दादी जानकी जी पार्क में जाएंगे, और वहां पर हम लोग थोड़ा खेलपाल भी करेंगे, थोड़ा पिकनिक भी करेंगे, और थोड़ा ज्ञान की चिटचैट भी करेंगे, अनुभवों की लेन देन भी करेंगे। बाबा कहते हैं कि भाई हम सब तपस्वी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तपस्वी हैं तो हमारा जीवन नीरस है, हमारे जीवन में मनोरंजन भी बहुत है, यही हमारे ज्ञान की विशेषता है। तो आज हमारे मनोरंजन का भी दिन है। तो अभी हम सुनते हैं सुमन बहन जी को। सुमन बहन जी बेसिकली बेंगलोर से हैं, और आप बाल्यकाल से ही अपने माता पिता के साथ इस ज्ञान मार्ग में आने लग गए थे, और करीब पिछले 28 वर्षों से हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। सुमन बहन जी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आप मधुबन में आ गई थी, और आने के बाद अनवरत रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। एजुकेशन विंग जो हमारा है काफी बड़ा, सेवा के क्षेत्र में देखा जाए तो एक बहुत ही अहम हमारा विंग है, उसकी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, और साथ साथ हमारा ये जो ज्ञान सरोवर परिसर है उसकी जो भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी आपका बहुत सहयोग रहता है निर्मला दीदी के साथ, और जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन और उसके एग्जीक्यूशन में आपका एक अहम स्थान, अहम भूमिका रहती है। तो अभी हम स्वागत करते हैं सुमन बहन जी का, स्वागत।
ओम शांति। दो दिन की भट्टी में सब तप गए, भरपूर हो गए, ईंट मजबूत हो गया, अभी या अभी कच्चा पक्का है, और भी जितना भी पकाते जाएंगे उतना पक्का होता जाएगा, है ना? ये लंबा प्रोसेस है, एक दो दिन में तो पकने वाली बात है ही नहीं, है ना? जब तक जीना है तब तक सीखना है, तब तक तो योग लगाना ही है, है ना? तो और अभी ये बहुत सुंदर हमें अवसर है कि संगम युग में बाबा ने हमें चूज किया, बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया, अपना संतान बनाया, अपना वर्षा देने के लिए, है ना? तो दुनिया के लोग तो भगवान को भगवान के रूप में याद करते हैं, कोई संबंध के बिना ही याद करते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए याद करते हैं, अपने अल्पकाल की इच्छाएं पूरी करने के लिए याद करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं आया हूं क्या देने के लिए, अल्पकाल की इच्छाओं को पूरी करने के लिए या थोड़ा बहुत जो चीजें हैं तो वो वरदान के रूप में देने के लिए या क्या देने के लिए बाबा आए हैं। बाबा आए हैं हमें वर्षा देने के लिए, छोटी मोटी चीज देने के लिए तो बाबा नहीं आए हैं। बाबा आए हैं हमें वर्षा देने के लिए, पूरा मालिक बनाने के लिए, है ना। तो मालिक बनना है तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें संबंध जोड़ना पड़ेगा बाबा के साथ, है ना। बाबा कहते हैं संबंध के साथ याद करो, सर्व संबंधों से मुझे याद करो। बाबा कहीं मुरलियों में यह बात कही है, क्योंकि संबंध के ऊपर बाबा इतना एम्फसाइज क्यों करते हैं। संबंध के बिना याद करने से क्या होगा, संबंध के बिना याद करने से क्या होगा।
नहीं,
वो तो है, लेकिन कोई भी संबंध के बिना ऐसे ही अगर याद करते हैं तो क्या होगा। शिव बाबा है, ज्योतिबिंदु है, सर्वशक्तिमान है, मैं भी आत्मा हूँ, ज्योतिबिंदु हूँ, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ, तो कोई भी संबंध के बिना अगर याद करते हैं बाबा को तो क्या होगा। मैं प्राप्तियां तो है उसमें भी, क्योंकि संबंध तो है, क्योंकि याद तो कर रहे हैं शिव बाबा को, वहां भी प्राप्ति है। लेकिन क्या होगा, वो याद लंबे काल नहीं हो सकता। जो गहरा होना चाहिए या थोड़े ही से समय में ज्यादा अनुभूति की बात है वो नहीं हो सकता। और दूसरी बात, कोई भी समस्याएं आती है तो उसमें हम बहुत जल्दी डगमगा जाएंगे अगर संबंध नहीं है तो। मैं ये बात क्यों कह रही हूं कि मैं प्रैक्टिकली ये बात, एक घटना मेरे सामने आई थी, तो बहुत सारा कुछ, एक वीआईपी बाबा का बच्चा था, आईएएस ऑफिसर थे, फिर बाबा का बच्चा बन गए और काफी साल बाबा के ज्ञान में चलते रहे। तो अचानक कुछ ऐसे बड़ी समस्या आ गई सेंटर पे, उनको अपने पर्सनल लाइफ में नहीं लेकिन सेंटर में कुछ ऐसी समस्या आई। तो फिर उनके मन के अंदर यह प्रश्न उठने लगा कि बाबा के घर में भी ऐसा होता है, बाबा के घर में भी ऐसा क्यों समस्या है, क्यों ऐसे आत्माएं ऐसे क्यों व्यवहार करते। तो बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठने लगा। तो एक बार अव्यक्त बाप दादा से डायमंड हॉल में मिल रहे थे, तो बाबा तो जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है, उस आत्मा को दृष्टि दिया, तो दृष्टि दे करके बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे। तो बाबा ने कहा अपना घर समझो, तो सारे व्यर्थ जो संकल्प है वो निकल जाएंगे, वो भस्म हो जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। अगर हम इस यज्ञ को एक पराय यज्ञ या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम देखते हैं, ये मना बाबा का, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, ये आपका यज्ञ है या आपके संस्था में ऐसा चलता है, क्या ये संस्था आपकी नहीं है, ये यज्ञ आपका नहीं है। ये यज्ञ आप, अपनापन तब होता है जब मैं गहराई से शिव बाबा के साथ वो अनुभव करती हूं कि शिव बाबा मेरा पिता है। जब वो मेरा पिता है, मैं संतान हूं, तो बाबा के साथ जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं वो मेरा है, चाहे वो बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, या कुछ भी है, बाबा की सेवा है, वो मेरा है, है ना। वो मेरापन तभी आता है जब मैं बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ती हूं, है ना। और दूसरी बात, ये बहुत साइंटिफिक है, बाबा बार बार ये संबंधों के बारे में क्यों कहते हैं, क्योंकि आत्मा संपूर्ण होता है सर्व संबंधों के आधार से। इसका मतलब क्या है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, मान लीजिए कोई घर में बच्चा पैदा होता है, तो उसको माँ है लेकिन पिता नहीं है, तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो क्या फिलिप, भले माँ बहुत प्यार दे रही है उस बच्चे को, माँ और बाप दोनों की जो प्यार है वो पूर्ण कर रही है, लेकिन फिर भी बच्चे के मन में क्या होगा, काश मुझे एक पिता होते, राइट? तो भले माँ के से बहुत प्यार मिल रहा है लेकिन फिर भी अंदर से वो खालीपन महसूस होता है, पिता होते, है ना? अगर पिता है और माँ नहीं है तो भी वो फीलिंग आता, काश मेरी माँ होती, है ना? तो हर एक संबंध का जो प्यार है उसका फ्लेवर अलग अलग है, उसका टेस्ट अलग है, उसकी भासना अलग अलग है। पिता का प्यार अलग है, माँ का प्यार अलग है, और माँ बाप दोनों हैं, लेकिन फिर अकेला बच्चा है तो फिर उसको क्या होगा, काश मेरा एक भाई या बहन होती। तो एक मतलब वो भी भाई बहन का जो प्यार है उसका फ्लेवर फिर अलग है, और दादा दादी नाना नानी उनके प्यार का भी फ्लेवर अलग है। तो सभी लोगों का जब प्यार बच्चे को मिलता है तो फिर वो उसके पर्सनालिटी पूरी तरह वो डेवलप होता है। जैसे कहते हैं ना कि 18 साल तक बच्चे को पूरी तरह वो प्यार मिलना चाहिए, वो सिक्योरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि वो परवरिश का समय है 18 साल तक। तो वो तैयार होता है बच्चा दुनिया को सामना करने के लिए, है ना? वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आत्मा के अंदर बहुत गहरा छाप पड़ जाता है। वो दुर्घटना अगर घटती है उन सालों के बीच में, 1 साल से 18 साल के बीच में कोई ऐसी दुर्घटना घटती है उसके जीवन में, उसका छाप जो है मन के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। और हमने कितना जन्म लिया है, ना हमारे लिए ना केवल एक जन्म की बात है लेकिन 63 जन्मों की बात है। सत्युग त्रेता में संपूर्ण सुख था, वहां कोई भी संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन द्वापर युग से लेकर के अभी तक कोई ना कोई जन्म में कोई ना कोई संबंध से हमने दुख बहुत उठाए हैं, जरूर उठाए होंगे। तो वो जो दुख आत्मा के अंदर छाप है, आत्मा के अंदर वो प्रिंटेड है, सुख भी है तो दुख भी वो हम लेकर के चल रहे हैं, राइट? तो वो दुख जो हमारे लिए आत्मा के लिए एक बोझ बन चुका है उसको हमें हील करना है, उसको निकालना है, उसको ठीक करना है। तो वो ठीक कैसा हो सकता है, इस जन्म का भी है और पिछले जन्मों का भी है, संबंधों के कारण से जो दुख हमने उठाई है उसको हमें हील करने की जरूरत है। और इस संबंध में भी, इस जन्म में भी बहुत बार होता है कि काश मुझे वो मिल जाती, या फिर मुझे पिता से ज्यादा प्यार मिल जाता, या माँ से कुछ ऐसा मिल जाता, एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमें नहीं मिला होता है इस जन्म में भी, तो उसके कारण से आत्मा में वो जो संपूर्ण सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो अभी क्या क्या बाबा ने क्या सिखाया है अभी, तो इंसानों से हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, जो भी हमें लेना है तो किन से लेना है, बाबा से लेना है। जो भी आत्मा को चाहिए बाबा देने के लिए तैयार है, बाबा से हमें लेना है, हमें इंसानों से एक्सपेक्ट रखना ही, एक्सपेक्टेशंस रखना ही नहीं है, है ना? तो फिर सर्व संबंधों के आधार से बाबा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हमें करने की जरूरत है। और संबंध क्यों है, और तीसरी बात संबंध क्यों है, क्योंकि फीलिंग वहां ही होता है जहां संबंध है, संबंध के बिना कोई फीलिंग आता ही नहीं है, है ना? कोई रास्ते चलते कोई अनजान व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके प्रति कोई भावना नहीं उत्पन्न होता, ठीक है, इंसानियत के नाते मैंने जाकर के थोड़ा मदद कर ली उसको, लेकिन कुछ दो तीन एक दिन के बाद तो भूल ही गए, है ना। लेकिन मेरा क्लोज फ्रेंड है या कोई सगे संबंधी है तो उसको कुछ हो जाता है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका जो छाप है, उसके लिए जो भावना है वो ज्यादा है, है ना। जहां संबंध है वहां भावनाएं हैं, वहां जहां संबंध नहीं है वहां भावनाएं नहीं है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं इस राज्यों के अभ्यास में, तीन चीजों को हम यूज करते हैं, राइट, तीन शक्तियों को यूज करते हुए हम योग लगाते हैं। एक है संकल्प शक्ति, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, चिंतन करते हैं, संकल्प शक्ति का उपयोग करते हैं। और दूसरी बात है विजुलाइजेशन, चित्रीकरण। विजुलाइजेशन के बिना योग संपूर्ण होगा ही नहीं। विजुलाइजेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं अगर सोचूं बुद्धि से परम धाम के बारे में, सोचूं परम धाम का चित्र पूरा मुझे क्लियरली नजर आ रहा है, जैसे फिल्म देख रही हूं, ऐसा संपूर्ण क्लियरली मुझे नजर आना चाहिए। विजुलाइजेशन क्लियर होना चाहिए। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है फीलिंग। फीलिंग के बिना योग में आनंद आ ही नहीं सकता, है ना। अगर आपको कहे कि यहां बैठे बैठे आप विजुलाइज करो, आप नींबू खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं तो क्या होगा, मुंह में वो रस आया, वो टेस्ट आई। तो विजुलाइजेशन की ताकत है, और फीलिंग, फीलिंग से ये उत्पन्न होता है, है ना। तो इसलिए बाबा के साथ जो संबंध है, जब वो संबंध गहरा है तो फीलिंग भी गहरा हो सकता है, है ना। संकल्प की शक्ति तो हम यूज कर ही रहे हैं, विजुलाइजेशन के बारे में पता है कि कैसे हम क्लियरली वो विजुलाइज करना चाहिए, लेकिन तीसरी बात जो है फीलिंग, गहरा फीलिंग। तो वो संबंध गहरा कैसे करें। बाबा कहते हैं, बाबा सबसे पहला संबंध बाबा के साथ सभी हम जो जोड़ते हैं वो है पिता का संबंध, राइट। तो पिता से क्या प्राप्ति होती है, वर्षा मिलता है और पालना मिलती है और शिक्षा उनसे मिलती है। हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन टीचर और सद्गुरु से ज्यादा मिलता है, है ना। मुख्यतः क्या बात है जो पिता से मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, सिक्योरिटी है, सुरक्षित महसूस करते हैं एक समाज में, ठीक है मेरा पिता है तो सुरक्षित महसूस करते हैं, और आइडेंटिटी मिलती है, कौन सा किसका बेटा है किसकी बेटी है वो आइडेंटिटी मिलती है, और क्या। ये सब बातें जो आप कह रहे हैं कि शिवाबा के साथ लागू किया है, किया है, ठीक है। क्योंकि क्या है, देह भान की जो आइडेंटिटी इतना गहरा है कि तो अब लौकिक पिता के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई इतना करते हैं, वर्षे के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन शिव बाबा मेरा पिता है, कौन सा वर्षा मिल रहा है पिता से, कौन सा वर्षा मिल रहा है, 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल रहा है, केवल वो कहने में है या सचमुच वो फीलिंग है कि मुझे सचमुच ये वर्षा मिल रहा है, सचमुच फीलिंग है, मालिक हूं, बाबा के खजानों का मालिक हूं। बाबा ने हम सभी को बच्चे तो मान लिए, लेकिन मैं आत्मा शिव बाबा को संपूर्णतः पिता माना, पिता माना, क्योंकि बच्चे और नौकर में क्या अंतर होता है, भगत और बच्चे के बीच में क्या अंतर होता है। जैसे लौकिक में एक बच्चा 5 साल का हो और गाड़ी उसका ड्राइवर है, बाहर वाला नौकरी में रखा हुआ है, सारा दिन वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन अगर कहे पूछे कोई कि गाड़ी किसकी है तो क्या कहेगा? मालिक की गाड़ी है, है ना? लेकिन वो बच्चे, 5 साल के बच्चे को पूछे, वो भले उसको चलाना नहीं आता है, लेकिन उसको अगर पूछे गाड़ी किसकी है, मेरी है। कहां से आ गई उसकी मेरी, वो गाड़ी उसकी कैसे आ गई, हो गई? उसको पता है पापा की जो भी चीज है, ये घर में जो भी चीजें हैं वो मेरी है, क्योंकि वो अधिकार वो महसूस करता है, है ना? यही अंतर है भगत और बच्चों के बीच में, है ना? बाबा के पास जो भी खजाना है वो मेरा है, वो एक्सेप्ट करना है हमें अभी, है ना? तो जब एक्सेप्ट करेंगे, वो अधिकार फील करते हैं, वो नशा फील करते हैं, फिर वो शक्ति हम फील करते हैं। जैसे आत्मा के 7 गुण हैं और मुख्यतः 7 संबंध हैं जो बाबा कहते हैं, तो ये 7 गुण 7 संबंधों के साथ कनेक्टेड है। पिता से इन 7 गुणों में से कौन से गुण मिलते हैं, कौन कौन से गुण हैं आत्मा के? शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता और ज्ञान, है ना? तो ये 7 गुण हैं आत्मा के, ओरिजिनल गुण, और 7 संबंध हैं। तो पिता से हमें शक्ति मिलती है, मानते हैं ये बात? शक्ति माना ये सिक्योरिटी मिलती है, ये विश्वास है कि पिता मेरे साथ है, वो छत्र छाया के रूप में है, वो शक्ति की अनुभूति होती है पिता के साथ के संबंध का। केवल ये जब हम सोचते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, वो सोचना और उसके तुलना में ये सोचना कि वो शिव बाबा मेरा पिता है, मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, मैं आत्मा शिव बाबा का संतान, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान, इसमें बहुत अंतर है। संबंध के साथ याद करना, उसकी शक्ति की अनुभूति करना, वो उसमें गहराई जाता है, है ना? चलिए 1 मिनट के लिए हम ये अनुभव करें, गहराई से वो अनुभव करें, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, पूरी तरह एक्सेप्ट करें कि शिव बाबा मेरा पिता है। जब भी योग करते हैं 3 बातों को आप चेक करें, संकल्प शक्ति, विजुलाइजेशन और फीलिंग। अपने आप को देखें प्रकृति के बीच में, क्लियरली नजर आना चाहिए। क्या आपने आप को क्लियरली देख पा रहे हैं भ्रुकुटी के बीच में, खुले आंखों से अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में देखें, एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा शिव बाबा के अति प्रिय संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। शिव बाबा सर्व शक्तियों का भंडार, सर्वशक्तिमान, जो दुनिया के लिए भगवान है, मेरे लिए पिता है। उस पिता के पास जो भी है, जो भी खजाना है, वो मेरा है। शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, मेरे लिए बाबा ने सब खजाने खोल के रखे हैं। जब भी चाहो जाकर के ले सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं है। शिव बाबा के ऊपर, शिव बाबा के खजानों के ऊपर मेरा संपूर्ण अधिकार है। खजाने मेरे, शिव बाबा मेरा। तो डिफरेंस महसूस होता है ना, केवल गुणों के ऊपर योग करना और संबंधों के साथ गुणों को अनुभव करना, इसमें अंतर है। और दूसरा संबंध जो बाबा ज्यादा एम्फसाइज करते हैं वो है माँ का संबंध, है ना। मात पिता एक साथ बाबा कहते हैं, लेकिन हम आज अलग अलग ले रहे हैं। मां से क्या मिलता है? लौकिक मां से प्यार मिलता है, संस्कार मिलते हैं, और भोजन मिलता है। बहुत जरूरी है। पालना मिलती है। भोजन तो है ही है, लेकिन उसके साथ केवल भोजन नहीं ना, पूरा कपड़े भी, घर भी साफ सुथरा मिलता है, सब कुछ मिलता है। पालना मिलती है, प्यार मिलती है, और क्या मिलता है? उससे भी बढ़ करके क्या मिलता है? उससे भी बढ़ केयरिंग है, सुकून मिलता है। खालीपन महसूस नहीं होता। जब बच्चा रो रहा होता है तो माँ के गोदी में जाते ही वो चुप हो जाता है ना। दूसरों के गोदी में उसको सुकून नहीं मिलता, लेकिन माँ के गोदी में पता है ये मेरी माँ है, जैसे सुरक्षित है, जैसे प्यार है। मतलब वो माँ का प्यार जो है वो निस्वार्थ है ना, और उससे भी बढ़कर है शांति। बाबा माँ के रूप में आत्मा को शांति मिल, सुगुण माना आत्मा को एकदम शांति, केवल ऊपर से नहीं, अंदर से आत्मा को ठंडक। ऐसे माँ से क्या मिलता? अंदर से ठंडक मिलती है माँ के गोदी में जाते ही। ऐसे ही शिव बाबा मेरी माँ है, जिनसे मुझे निस्वार्थ प्यार मिलता है, पालना मिलती है। भले हम कितने भी नखरे करें, फिर भी बाबा आओ बच्चे है ना, निस्वार्थ प्यार है, अनकंडीशनल लव है, शिव बाबा से मिलता है तो वो सुगुन, तो वो अनुभव करें शिव बाबा से कि माँ का प्यार हम कैसे, अंदर से वो सुगुन में, केवल ऊपर ऊपर से शांति की अनुभूति नहीं करना है, अंदर से सुगुन महसूस करना है। और जब भी बच्चा बीमार होता है माँ को याद करता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है माँ को याद करता है ना, तो जो भी समस्याएं आती है तो उसको उसका समाधान माँ करती है ना। तो बाबा को जब हम माँ के रूप में याद करते हैं, भले हम कितने भी नखरे करें, कितना भी ये करें, लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं कि चलो आ जाओ मेरे पास, कभी नकारते नहीं है, कभी घर से बाहर नहीं निकालते। पिता भले गुस्से से कहेंगे कि घर से निकल जाओ, लेकिन माँ कभी भी नहीं कहेगी घर से निकल जाओ, ये मेरा बच्चा है ना। तो ऐसे बाबा हमेशा वो निस्वार्थ प्यार हमारे साथ रखते हैं, वो सुगुन बाबा से हमें माँ के रूप में मिलता है, तो वो भी अनुभव करना बहुत जरूरी है। और आत्मा के जो मुख्य गुण है वो है शांति। बाबा हमेशा बेसिक जो सबसे पहला जो गुण है वो शांति बाबा कहते हैं ना, तो पहला जो गुण है वो माँ से मिलते हैं। बाबा माँ के रूप में जब हम याद करते हैं तो वो सुगुण, वो शांति, वो ठंडक, वो शीतलता हमें वो अनुभव करना है। तो चलिए एक मिनट के लिए फिर वो अनुभव करें माँ के रूप में, वो विजुलाइज करें बाबा माँ है, शिव बाबा माँ है। एक उसके पहले मैं एक हंसी की बात सुनाती हूँ। दादी जानकी हमेशा कहते हैं हमारे पांच माँ हैं, कोई क्लास में कहते हैं सात माँ हैं, तो चलिए पांच माँ कौन से हैं हमारे? शिव बाबा तो है ही है माँ, ब्रह्मा माँ है, लौकिक माँ है, मम्मा माँ है, ड्रामा ड्रामा माँ है ना, ये अलौकिक माएं हैं। तो ये छठी है, सिक्स्थ माँ है भूमि, भूमि को भी हम माँ कहते हैं, और साथ गौ माता है ना, ये भक्ति मार्ग की बात है। लेकिन जो पांच माँ जो अलौकिक माँ है तो वो मुख्य है ना। तो जो जिनको पांच माँ है वो कितना भाग्यशाली है, लेकिन उसमें से एक मुख्य माँ है शिव बाबा, मेरा मुख्य, हमारे मुख्य माँ है। तो चलिए एक मिनट के लिए वो अभ्यास करें, वो अनुभूति करें, वो फीलिंग में आए कि शिव बाबा ये माँ है, और फीलिंग जागृत करें, अपने स्थिति में स्थित हो जाए रुकुटी के बीच में, शिव बाबा को ऊपर देखें। अगर शिव बाबा को विजुलाइज करते हुए वो फीलिंग लाना अगर मुश्किल लगता है माँ के रूप में, ब्रह्मा माँ को भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। शिव बाबा सूक्ष्म ब्रह्मा के तन में, बाबा माँ के रूप में मुझे प्यार और पालना दे रहे हैं, निस्वार्थ प्यार। जिनके सानिध्य में जाते ही मैं आत्मा सुकून महसूस करती हूँ, बाबा मुझे देख करके जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं वैसे ही बाबा ने मुझे स्वीकारा है, एक्सेप्ट किया है। शिव बाबा मां के सामने मुझे कोई भी प्रकार के संकोच नहीं है, डर नहीं है। मैं जो हूं जैसे हूं वो मुझे जानते हैं। गहन शांति की अनुभूति करती हूं बाबा के सानिध्य में। बाबा की गोदी में मैं एकदम शांति की अनुभूति करती हूं। तीसरा जो संबंध है बाबा का वो है टीचर के साथ का संबंध। शिव बाबा हमारा टीचर है, तो टीचर से क्या मिलता है? ज्ञान, शिक्षाएं, है ना? जो लौकिक टीचर है उनसे क्या ज्ञान मिलता है, और अलौकिक पारलौकिक टीचर है तो उनसे क्या ज्ञान मिलता है? लौकिक टीचर से तो सब्जेक्ट्स का ज्ञान मिलता है, जो भी विषय है, लेकिन पारलौकिक टीचर से सृष्टि चक्र का, आत्मा का, परमात्मा का, कर्म का ज्ञान, जो भी अलौकिक ज्ञान है, आत्मा के संबंधित जो भी ज्ञान है, इस पारलौकिक पिता से हमें मिलता है। उस ज्ञान से केवल आमदनी होती है उस जन्म का, लेकिन इस ज्ञान से ना केवल इस जन्म की आमदनी है लेकिन 21 जन्मों के लिए आमदनी है। हम आत्माएं ज्ञान के आधार से, बाबा कहते हैं, अमीर बनते हैं। ज्ञान रत्न है, ज्ञान को जितना हम धारण करते हैं उतना हम आत्माएं भरपूर होते जाते हैं, और ज्ञान से हम अमीर बन जाते हैं, अमर बन जाते हैं, है ना? तो इसीलिए केवल हम ये सोचे कि ज्ञान हमें प्राप्त होता है, लेकिन बाबा हमारा टीचर है, टीचर मेरा सामने बैठ करके मुझे पढ़ा रहे हैं, जब वो भावना है तो मुरली का महत्व तब है। बाबा कहते हैं रोज मैं आकर के पढ़ाता हूं, हम मुरली में जाना है जाना है, वो ऐसे सोच करके जाएंगे तो उसमें रस, हाँ ठीक है, जबरदस्ती कभी कभी लगता है कि जाना ही पड़ता है, या फिर ऐसे भारीपन महसूस होता है, लेकिन फिर ये सोचे कि बाबा आकर के मुझे टीचर के रूप में पढ़ाने आया है, हर रोज आ रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए टीचर बन करके, तो फिर उसमें उमंग उत्साह बढ़ता है। और प्रैक्टिकली वो बात सच भी है ना, कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के ये मुरली उच्चा रहे हैं, और हर रोज आकर के, भले वो मुरली जो उच्चा रहे हैं वो कितने साल पुराने हैं, 60s में वो साकार मुरली उच्चा रहे, लेकिन फिर वो महसूस नहीं होता कि उस समय के, लेकिन अभी भी जब आज भी जब हम मुरली सुनते हैं, हर एक को अपने जीवन के लिए कनेक्टेड कोई ना कोई बात मिल ही जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल ही जाता है हर रोज जब हम मुरली सुनते हैं। तो माना बाबा ने जब भी वो मुरली सुनाई होगी केवल उस दिन और उन लोगों के सामने नहीं उच्चारी है, लेकिन भविष्य को देख करके सभी बच्चों को विजुलाइज करते हुए बाबा ने उन शब्दों को उस मुरली को उच्चारे हैं। तो इसीलिए वो कनेक्शन हम महसूस करते हैं। पुराने मुरलियां नहीं है लेकिन आज की मुरली, इसीलिए कहते हैं ना, भले वो ओरिजिनल डेट तभी क्या हो सकता है, लेकिन जो भी मुरली सुनते हैं तो फिर बाद में क्या कहते हैं, आज की मुरली में बाबा ने ऐसा कहा है। ये नहीं कहेंगे उस डेट की मुरली में बाबा ने ऐसा कहा है, आज की मुरली में बाबा ने ऐसा कहा हुआ, क्योंकि वो कनेक्शन हम सभी फील करते हैं। जब हम उस कनेक्शन को फील करते हैं तो ज्ञान के पॉइंट्स का वैल्यू हम रखते हैं। वैल्यू तभी आएगा जब कनेक्शन हम फील करेंगे, कनेक्शन ही नहीं है तो उसका वैल्यू भी नहीं होगा। तो इसीलिए वो कनेक्शन टीचर के साथ का अनुभव हमें बहुत जरूरी है ना। तो वो प्रैक्टिकली वो इंसान के रूप में या फिर वो एक संबंध के रूप में जब हम अनुभव नहीं करते हैं तो छोटी छोटी बातों की भी अनुभूति या फिर उसका महत्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए टीचर का साथ का अनुभव, तो फिर हर ज्ञान को हम उस रीति से सोचने लगते हैं, उस रीति से अनुभव करने लगते हैं और उस रीति से विश्लेषण उसका पूरा खोल खोल करके फिर हर चीज को हम अनुभव करने लगते हैं। तो इसीलिए टीचर के साथ का संबंध भी बहुत जरूरी है, वो एक बेसिक है हमारे लिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है हमारा। बीके बनना माना स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट लाइफ है हमारा और टीचर हमारा शिव बाबा है, वो हमारा नशा है। यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो लोगों को नशा रहता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो ये नशा रहता है। तो हमारा यूनिवर्सिटी कौन सा है? गॉडली यूनिवर्सिटी है। वो नशा तभी रहता है क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है, वो जब हमारे पास वो नशा है तो इसका भी नशा हमारे पास हो सकता है ना। तो फिर पांचवा संबंध है, तीसरा संबंध हो गया, अभी चौथा संबंध है। चौथा संबंध कौन सा है? सद्गुरु का संबंध। सद्गुरु से क्या मिलता है? दीक्षा मिलती है और सही रास्ता मिलती है, और सद्गुरु से क्या मिलता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है, और वरदान मिलता है। सद्गुरु से वरदान मिलता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है, और गति सदगति का रास्ता मिलता है। और सात गुणों में से कौन सा गुण है जो हमें आत्मा में अनुभूति होती है सद्गुरु के साथ के अनुभव से? पवित्रता, है ना। क्योंकि गति सदगति का रास्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति भी तब कब प्राप्त हो सकता है? जब हमारे आत्मा के अंदर पवित्रता की जो नींव है वो मजबूत है। जब भी हम गुरु को देखते हैं, गेवे वस्त्रधारी को हम देखते हैं, तो पवित्रता की भासना आती है, है ना। तो सद्गुरु से हमें पवित्रता का वर्षा मिलता है, और पवित्रता हमारे लिए फाउंडेशन है। पवित्रता के बिना और दूसरे कोई भी गुण हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वर्षा प्राप्त करना है तो उसका भी फाउंडेशन है पवित्रता, है ना। तो पवित्रता कभी कभी हमें भारी लगने लगता है, नहीं? बाबा के पवित्रता की जो परिभाषा है वो बहुत गहरा है, केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है। बाबा के जो परिभाषा है पवित्रता के बारे में, केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है, आत्मा के अंदर जो संकल्प और फीलिंग्स में भी शुद्धता पवित्रता है ना। तो वहां तक हमें अपने पवित्रता को ले जानी है, तो वो फिर भारी लगने लगता है कभी ना कभी। तो लेकिन बाबा को जब हम सद्गुरु के रूप में याद करते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर हमें दिखाते हैं। गुरु के सामने जब जाते हैं तो कोई ना कोई समस्या लेकर के जाते हैं, भक्तगण समस्या को लेकर के जाते हैं गुरु के सामने, और भले कितना भी मुश्किल समस्या है उसको लग रहा होगा कि कोई समाधान ही नहीं है, लेकिन गुरु के सामने जाते ही गुरु बहुत सिंपल सॉल्यूशन देते हैं, मार्ग दिखा देते हैं, कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। तो हमारे जीवन में भी कभी भी समस्याएं आती हैं तो मार्गदर्शना के लिए बाबा को सद्गुरु के रूप में जब हम याद करते हैं तो बहुत जल्दी हमें दिशा मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, समस्या का समाधान मिल जाता है। तो इसीलिए सद्गुरु के साथ संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है, और सद्गुरु से वर्षे के रूप में हमें पवित्रता की शक्ति मिलती है। भले स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, लेकिन सद्गुरु के रूप में जब बाबा को याद करने लगते हैं पवित्रता हमारे लिए सहज होने लगता है। तो इसीलिए सद्गुरु के रूप में पवित्रता की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा को कहते हैं पतित पावन है। बाबा का मुख्य काम है, मुख्य कर्तव्य बाबा का ये है आत्मा को पतित से पावन बनाना। कोई और काम तो है ही नहीं बाबा का। बाबा का मुख्य कर्तव्य यही है पतितों को पावन बनाना। तो इसीलिए सद्गुरु के रूप में, चलिए टीचर और सद्गुरु के रूप में हम बाबा को याद करते हैं एक मिनट में। टीचर का संबंध तो इजी है लेकिन बार बार वो फीलिंग तो जागृत करना पड़ता है। लेकिन अभी हम सद्गुरु के रूप में याद करते हैं बाबा को। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, पवित्रता मुझ आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्रता मेरा निजी गुण है। शिव बाबा मेरा सद्गुरु, पतित पावन, मुझ आत्मा को पवित्रता का वरदान दे रहे हैं। इस वरदान से पवित्रता मुझ आत्मा के लिए बहुत ही सहज और नेचुरल बनता जा रहा है। अपने सिर पर बाबा के हस्त को विजुलाइज करें, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा वरदान दे रहे हैं पवित्र भव, योगी भव, जो वरदान बाबा दे रहे हैं मैं आत्मा उसको स्वीकार रही हूं, पूरी तरह एक्सेप्ट कर रही हूं। पवित्रता मुझ आत्मा के लिए बहुत ही सहज और नेचुरल बनता जा रहा है। जिंदगी के हर मोड़ पर बाबा सद्गुरु के रूप में मेरे अंगुली पकड़कर रास्ता दिखा रहे हैं। सभी उलझने सुलझा रहे हैं। जिंदगी में रास्ते बहुत स्पष्ट नजर आ रहे हैं। सद्गुरु की छत्र छाया में मैं आत्मा एकदम सुरक्षित, शक्तिशाली और पवित्र हूं। ओम शांति। ये चार संबंध हुए और तीन बाकी हैं, है ना? पांचवा संबंध कौन सा है? मात पिता टीचर सद्गुरु हो गया, मित्र का संबंध है ना। जो ये चार संबंध पहले वाला जो चार संबंध थे, तो ये इन सभी संबंधों में केवल लेने का संबंध है। मां से भी लेते हैं, पिता से भी लेते हैं, टीचर से भी लेते हैं और सद्गुरु से भी लेते हैं। उनको कुछ देते हैं? क्या देते हैं उनको? कुछ देते हैं? मात पिता टीचर सद्गुरु को क्या देते हैं? यहां लेने का ही संबंध है ना। पहले लौकिक में अलग है, फिर बाद में जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो मात पिता के देखभाल करते, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले तो लेते हैं, है ना। टीचर से भी लेते हैं, ज्ञान लेते हैं और सद्गुरु से भी वरदान लेते हैं, मार्गदर्शन लेते लेते ही है। लेकिन मित्र के संबंध में लेन देन दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन केवल अगर मित्र के संबंध में केवल लेने की भावना रखते हैं तो वो रिलेशनशिप, वो फ्रेंडशिप नहीं चल सकता। लेन देन दोनों होना चाहिए। खुदा दोस्त है, शिव बाबा हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, तो फिर यहाँ क्या लेना है, क्या देना है? क्या लेना है, क्या देना है? ओके, क्या गुण हम महसूस करते हैं इस फ्रेंड से? क्या सुख है ना, जब फ्रेंड्स के साथ मिलो जुलो तो फिर खुशी मिलती है। आनंद तो अलग बात है, वो परमानंद, वो बहुत ही ऊंचे। आनंद अलग है, सुख अलग है, खुशी अलग है ना। तो वो फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, वो खुशी मिलती है, सुख मिलता है, कोई वहां बाउंड्रीज नहीं, कोई भी ये नहीं है, मतलब बहुत ही। और ये फ्रेंड जो बातें हम माता पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो फ्रेंड्स के साथ हम शेयर करते, दिल खोल करके, जो भी मन की बात है, दिल की बात है, फ्रेंड्स के साथ हम शेयर कर सकते हैं। क्यों? वो बराबरी है। मात पिता टीचर और सद्गुरु वो ऊंचे हैं, हम थोड़ा नीचे हैं, राइट? लेकिन फ्रेंडशिप में बराबरी है ना। तो और आत्मा का शिवाबा के साथ फ्रेंडशिप करना है, बराबरी किस बात की है? बराबरी वालों में ही फ्रेंडशिप होता है। शिव बाबा और आत्मा के बीच में बराबरी क्या है फिर? रूप में बराबरी है, मैं भी बिंदु हूं और शिव बाबा भी बिंदु है, और घर हमारा एक ही है, घर हमारा एक ही है ना। कौन सा घर है आपका? परम धाम है ना। तो हम सभी आत्माओं का घर परम धाम है, शिव बाबा का भी घर परम धाम है, तो एक ही घर के वासी हैं, तो उसमें बराबरी हो गई। भले पोजीशन अलग अलग है, वो ऊपर है, हम कहीं भी हो सकता है, वो उनके बाजू में या नीचे बहुत दूर, लेकिन घर तो एक ही है ना, घर में बराबरी है। और तीसरी बात किस बात में बराबरी है? गुणों में वो सागर है, लेकिन हम तो गागर है, थोड़ा बहुत तो है, भले उनके जितना सागर नहीं है, उनके जितना बेहद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है ना। गुणों में भी थोड़ा बहुत समानता, लेकिन बिल्कुल निर्गुण तो नहीं है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके संतान है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो तीन चीजों में बराबरी है हमारी, राइट? रूप, धाम और गुण। तो फ्रेंडशिप हम कर सकते हैं शिव बाबा के साथ, है ना। इस शिव बाबा के साथ जब हम फ्रेंडशिप करते हैं तो दिल खोल करके जो भी बात है उनको हम बता सकते हैं, क्योंकि वो किसी और को हमारे सीक्रेट्स नहीं बताएंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा के साथ दिल खोल करके वार्तालाप कर सकते, खुदा को दोस्त हम बना सकते हैं, और जब भी ऐसा कठिन समय आता है दोस्ती होते हैं, फ्रेंड्स ही होते हैं जो मदद करने वाले होते हैं, है ना। तो अगर फ्रेंडशिप अगर गहरा है तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन उसमें भी बहुत जब क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, है ना। तो बाबा के साथ वो फ्रेंडशिप हमें निभानी है, और यहां लेन देन है, देना और लेना दोनों है। बाबा से तो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन देना क्या देना है, क्या देना है? एक हंसी की बात सुनाओ, एक लेन देन की बात है। चलो नकीले की ही बात करती हूँ, नकीले में हुआ नहीं लेकिन हो, ऐसे बताऊंगी। एक है ना, दो दोस्त जो जा रहे थे, और एक दोस्त है ना नकीले में गिर गया। वो दोनों व्यापारी थे, वो जो होते हैं, तो वो एक दोस्त गिर गया तो फिर ये उसने एक हाथ उठाया तो मेरा हाथ ये बहुत ही चटपटा रहा था, मुझे निकालो। तो वो जो ऊपर खड़ा था दूसरा दोस्त, तो उसने बोला कि चलो हाथ दो तुम्हारा। तो फिर वो हाथ दे नहीं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है वो हाथ क्यों दे नहीं रहा है, हाथ क्यों नहीं दे रहा है। तो फिर उसने उसने फिर सेंटेंस चेंज किया, मेरा हाथ लो, तो फटक से उसने हाथ ले लिया। तो मैंने देने के लिए हम तैयार नहीं, लेने के लिए हम तैयार हो जाते। तो ये केवल एक शब्द की बात है, राइट? तो केवल हंसी की बात है, लेकिन फिर हम साइकोलॉजी भी ये है, है ना। जहां कुछ मिल रहा होता है लोग वहां भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं। अगर डोनेशन करने के लिए कोई ऐसा खून डोनेट करो या कुछ भी दान करने के लिए ऐसा बोर्ड लगा देते हो, वहां भीड़ लगता नहीं है। लेकिन यहां बाबा के साथ अगर मेरा संबंध, जो दोस्त का संबंध हम मुझे गहरा करना है, तो लेन देन दोनों होना बहुत जरूरी है। बाबा से लेते आए हैं, पहले दिन से लेते आए हैं, लेकिन बाबा को देना क्या है, देना क्या है बाबा को? सहयोग देना है। किस बात में सहयोग देना है? तन मन धन से और सृष्टि परिवर्तन में। और वो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई, छोटी छोटी बात, दिन के रूटीन में, दिनचर्या में देने की बात, वो बताइए। विकार व्यर्थ हो, ठीक है, और समय देना है और याद करना है और हाँ भड़ास जो है उसको निकाल देना है, दे दो वो भी दे देना है, भड़ास दे देना है, ओके, वो सब ठीक है। लेकिन जब बाबा को मदद की जरूरत होती है ना यज्ञ में, पर ले तो रहे हैं लेकिन यज्ञ में फिजिकली जो भी मदद की जरूरत है वहां कितना मैं सहयोग कर रही हूं, चाहे तन मन धन कुछ भी है, तो बाबा तो लेता नहीं है, निराकार है, उसको तो चाहिए नहीं कुछ भी। कितना भी हम जो भी बनाते हैं, जो भी यज्ञ में ना संस्था में यज्ञ में जो भी बनाते हैं बाबा के बच्चों को आने के लिए, फिर उनकी सुविधा के लिए बनाते हैं, राइट। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो भी जो मेरा बूंद बूंद से सागर बनता है, सहयोग से स्थूल रूप से भी जितना मैं सहयोग देती जाऊंगी तो उतना मेरा संबंध गहरा हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक कदम हिम्मत का आप पहले रखोगे तो हजार कदम मदद मेरी मिलती है। कई बार हम सोचते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि बाबा को हम कितना याद करते हैं, कितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी हमें मदद क्यों नहीं मिल रही है। तो वो एक कदम हिम्मत का हम नहीं रख पा रहे हैं। एक कदम नहीं रखेंगे तो ये रूल है, ये डील है बाबा के साथ, बाबा ने ये डील किया है, जब तक आप एक कदम हिम्मत का नहीं रखोगे हजार कदम मदद मेरा नहीं मिलेगा। एक कदम हिम्मत का आपका रखना, आपको रखना पड़ेगा, हजार कदम मदद मेरा मिलेगा, है ना। तो कहीं समस्याएं जब आती है तो वो हिम्मत का कदम का सहयोग हमें देने की जरूरत है, तब बाबा ऑटोमेटिकली मदद देता जाएगा। तो इसलिए देने की भावना हमारे अंदर जागृत करनी पड़ेगी, ना केवल बाबा और बाबा के यज्ञ के लिए लेकिन संसार के लिए। जितना हम देते जाएंगे बाबा फिर भरता जाएगा। बाबा का परिवार मेरा परिवार है तो इसीलिए वो दोनों संबंध बहुत जरूरी है, फ्रेंड का लेना और देने का संबंध। और सिक्स्थ संबंध है, सिक्स्थ संबंध क्या है, प्रियतम का। प्रियतम का संबंध क्या मिलता है, उस संबंध से प्यार मिलता है, है ना। बहनों के लिए यह संबंध बहुत इजी है, भाइयों के लिए और इजी है। भाई क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं आत्मा सजनी है, शिव बाबा साजन है, है ना। तो बहन क्योंकि शरीर का वो भान होता है ना, इसके कारण से बहनों को इजी हो जाता है बाबा को साजन के रूप में याद करना। एक बार गुलजार दादी कुमारों की भट्टी में क्लास कराते समय सर्व संबंधों का ही उन्होंने ये बात उठाई थी, तो उन्होंने गुलजार दादी ने बहुत सुंदर ये कहा था कि बाबा ने भी ये कहा हुआ है कि सर्व संबंधों के रूप में याद करना जरूरी है, और उसमें से एक संबंध भी छूट गया, सात संबंध, ये जो सात संबंध है वो मुख्य है लेकिन उसमें से एक संबंध भी छूट गया तो वो संबंध निमित्त बन जाता है बाबा से दूर होने के लिए, है ना। तो इसीलिए प्रेम का संबंध शिव बाबा के साथ जोड़ना सभी आत्माओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा को प्यार बहुत जरूरी है, है कि नहीं, है ना। आत्मा के प्रेम की परिभाषा भले आजकल की दुनिया में बहुत अलग हो गया है लेकिन बाबा से जो प्यार मिलता है, अलौकिक प्यार, रूहानी प्यार जो मिलता है, आत्मा के अनेक जन्मों का जो दुख है वो नष्ट हो जाता है, अनेक जन्मों का जो बर्डन है, जो भारीपन है, तो वो सब कुछ नष्ट हो जाता है, आत्मा हल्की हो जाती है। वो प्यार की अनुभूति बाबा से अनुभव करना बहुत जरूरी है। भले हम कितने बड़े बड़े स्वमान ले, कितने बड़े बड़े पॉइंट्स ले, लेकिन प्यार की अनुभूति के आगे कुछ नहीं है, वो बेसिक है। तो बहुत चीजें, इसीलिए कहते हैं लव हैज द हीलिंग पावर, प्रेम में वो हीलिंग की शक्ति है। बाबा से वो प्यार की अनुभूति करना बहुत जरूरी है, और वो संबंध के साथ जब हम अनुभव करते हैं तो प्यार हम पूरी तरह अनुभव कर सकते हैं। आत्म प्रकाश भाई बहुत सारे क्लासेस में भी ये कहते आए हैं, और कुमारों की भट्टी में अनेक क्लासेस भी उन्होंने कराई है, और स्टार्टिंग में जब मधुबन में आए थे तो उन्होंने अमृत वेले में बहुत लंबे काल तक उन्होंने अनुभव ये किया, मैं आत्मा शिवाबा की सजनी हूं। ये भाई करके देखे, बहनों के लिए इजी है, लेकिन भाई भी ये करके देखे, मैं आत्मा, क्योंकि भले इस जन्म में भाई है, भाई के छोले में है, लेकिन 84 जन्मों में कभी ना कभी बहने बने ही ना, नहीं बने, नहीं बने 84 जन्म में सभी भाई बने हैं क्या? नहीं, अल्टरनेट बाबा कहते हैं, एक जन्म भाई लेते तो एक जन्म बहन लेते, या दो दो जन्म ऐसा कुछ होता है, मैं ज्यादा नहीं, बहुत लंबे काल, जो 6-8 जन्म भाई हो फिर 2-3 बहन, ऐसा नहीं होता। तो इक्वल बहन भाई का इक्वल जन्म ले, तो इस जन्म में भले भाई है लेकिन आत्मा में वो संस्कार तो है सब कुछ, तो इसलिए वो उसको इमर्ज करने की जरूरत है, तब हम बाबा से वो प्यार की अनुभूति कर सकते हैं। और ये जब प्यार अटूट हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कुछ भी हम परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकता, है ना। और लास्ट जन्म, लास्ट संबंध कौन सा है, सातवां संबंध, बच्चे का संबंध, बाबा मेरा बच्चा है, उस संबंध से कौन से गुण की अनुभूति होती है? वही एक बचा हुआ है। सब गुण हो गए, आत्मा के 6 गुण तो हो गए, तो सातवां वही बचा है, आनंद, है ना। माताएं क्या कहती है, बच्चे से आनंद की अनुभूति होती है, छोटे बच्चे से ज्यादा होती है, छोटे बच्चे से होती है। हाँ, ये अनुभूति होती है आनंद, एक प्रकार से निश्चल कुछ, मतलब कोई, मतलब ये निस्वार्थता होती है उस संबंध में, है ना, एक सुगुन मिलता, बहुत ही अंदर से वो ब्लेसिंग, वो आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए लोग, आप कुछ ये जो अधर कुमार कुमारियां हैं यहाँ, माताएं और भाई अनुभव किए होंगे, जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उनको एक अलग प्रकार की अनुभूति, एक अलग प्रकार का आनंद अंदर से महसूस होता है। मतलब इस जन्म में मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन फिर लोगों के जो अनुभव मैं सुनती हूँ, ये करती हूँ, तो फिर वो अनुभव, तो बाबा को जब हम बच्चा बनाते हैं तो कौन सा फीलिंग, भले वो आनंद का अनुभूति, आनंद की अनुभूति है, लेकिन दूसरे कौन सी भावनाएं जागृत होती है जब शिव बाबा को हम बच्चा बनाते हैं, बाबा मेरा वारिस है, और उसके लिए उसको कुछ करने की भावना, है ना। क्योंकि माँ बाप को बहुत ये होता है कि बच्चे को के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, जिम्मेवारी होती है। शिवाबा के लिए तो कुछ जिम्मेवारी कुछ है ही नहीं, शिवाबा के लिए कुछ करना है आपको, उसको संस्कार डेवलप करो, उसके परवरिश करो, पालन पोषण करो, उसको अच्छा संस्कार दो, इसके साथ जवाबदारी है, एजुकेशन के लिए पे करो, एजुकेशन का देखो, गलत रास्ते पे ना जाए, इसकी चिंता करो, उसका संग कैसा है, उसका उसके बारे में परेशान हो, इसके बारे में कुछ भी नहीं है ना शिवाबा के लिए, लेकिन कौन सा है, कौन सी बात है, जब बाबा को जब हम बच्चा बनाते हैं तो देने की भावना है, लेकिन क्या देना है, यज्ञ के संभाल में। तो जैसे अगर आपको 3 बच्चे होते, आजकल तो बेटा और बेटी समान वर्ष के अधिकारी हो गए हैं, राइट, तो अगर 3 बच्चे हैं तो उनको इक्वली वर्षा देते हैं, शिव बाबा को जब बच्चा बनाया तो कितने बच्चे हैं आपको? चार बच्चे हैं। तो बच्चा बनाया तो क्या देंगे? तो वो सोचने की बात है, क्वेश्चन मार्क मैं लगा करके छोड़ दे रही हूं इसको। कितना आप बाबा को बच्चे के रूप में मानते हैं? राइट, अपने आप को पूछिए। जब आपका आपके दो बच्चे हैं तो उनके लिए आप क्या दे रहे हो? अगर दो बच्चे के जगह आप तीसरा बच्चा आप शिव बाबा को मान रहे हैं तो उनके लिए क्या दे रहे हो आप? ये आपके लिए मनन चिंतन की बात है, ठीक है? तो इस पे मैं छोड़ देती हूं, ठीक है? क्योंकि जब तक वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना, वो संबंध की गहराई नहीं होता है, तो जब बच्चा मान लिया है तो फिर क्या है? ठीक है, कौन से प्रॉपर्टी? इसीलिए बाबा कहते हैं घर के बच्चे बनो, संबंध जोड़ो। संबंध जब जुड़ता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ। भगत नहीं है, बच्चे हैं, संबंध है, ना केवल बच्चे लेकिन सर्व संबंध है। तो इसके बारे में और गहराई से आप, केवल एक थोड़ा थोड़ा मैंने बताया लेकिन और गहराई से अनुभव करना, एक एक चीज, एक एक संबंध, एक एक गुण हमें गहराई से अनुभव करना है, ठीक है? ओम शांति। हाँ जी, प्रियतम के रूप में बाबा साजन है, मैं आत्मा सजनी हूं, और साजन और सजनी का संबंध जो है वो बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। सभी संबंधों से गहरा संबंध साजन सजनी का होता है। इस जन्म में आप भाई हो, भाई 84 जन्मों के बारे में सोचो। आत्मा जब समझोगे ना तो बाबा सचनी साजन के रूप में हो जाता है। सजकर जाना है वो तो ठीक है। तो बाबा हमें सजा रहे हैं ना, साजन है, आत्मा को सर्वगुणों से सजा रहे हैं। लेकिन जो गहराई है वो फील करिए, प्यार की गहराई को, वो संबंधों की गहराई को समझिए आप। आपके आप बुरा ना माने तो आपकी शादी हुई है, राइट? तो वो भले ज्ञान में नहीं थे तो उस समय जो नए नए शादी हुआ था आपका, तो वो जो संबंध था आपके पत्नी के साथ, राइट, वो जो गहरा संबंध, राइट, तो वो जो संबंध भले वो फिजिकल है लेकिन आत्मा शुभाबा के साथ जब हम साजन सजनी का संबंध जोड़ते हैं तो वहां कोई माना कोई भी वहां दूरिया नहीं है, एकदम जुड़े हुए, जैसे ना आत्मा और परमात्मा शिव और शक्ति जुड़ी हुई है बहुत गहरा, को वो अलग है ही नहीं। जैसे पति पत्नी को कहते हैं कि ये मेरा अर्धांगिनी है, कंबाइंड है, वो दोनों शादी होते हैं वो कंबाइंड के रूप में, केवल अकेले के लिए बारे में नहीं सोच सकते, वो परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा या पति पत्नी दोनों को एक साथ सोचना पड़ेगा, अकेले के लिए नहीं सोच सकते, अर्धांगिनी कहते हैं एक साथ। ऐसे आत्मा परमात्मा के साथ इतने गहराई से जुड़ी हुई हो वहां कोई दूरिया ही नहीं है, है ना? कोई भी वहां मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के फुट भी डालने की कोशिश कर, कोई है मार्जिन ही नहीं है वहां, क्योंकि हमारे बीच में कोई गैप ही नहीं है जो तीसरा व्यक्ति आए। ऐसा संबंध हर दम जुड़ी हुई, हर समय जुड़े हुए, वो संबंध। और बच्चे के रूप में कि जैसे बाबा मेरा बच्चा है शिव बाबा, और पिता के नाते या माँ के नाते, एक पेरेंट के नाते बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, देने की भावना रखते हैं, तो बाबा को भले देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर वो अनुभव करें बस। हाँ जी,
बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसा सोचता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा आ गया। एक सिक्योरिटी महसूस होती है। बाबा के साथ संबंध जोड़ के ऐसी सिक्योरिटी महसूस।
हाँ, सिक्योरिटी महसूस होता है, मैं सहारा है, बुढ़ापे में लाठी का सहारा होता है, तो ऐसे बच्चे का सहारा है वो बाबा, हमारा आधार है, हमारा सपोर्ट है, ये सोचे। लेकिन आत्मा कभी बुढ़ी ही नहीं होती है ना। शरीर को सहारा चाहिए, शरीर को आधार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आत्मा कभी बुढ़ी नहीं। हाँ, लेकिन सहारा। हाँ, खुशी भी होती है। नहीं, जब बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद कुछ हासिल करते हैं, कुछ बड़ा नाम करते हैं, उनको देख करके बहुत गर्व महसूस होता है माँ बाप को, है ना, कि ऐसे बाबा को देख करके, बाबा के यज्ञ को देख करके हम महसूस होवे कि गर्व महसूस करें कि हाँ ऐसे। हाँ, मतलब अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती है, अलग अलग। ठीक है, ओके, चलिए, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन बहन जी आपका। आज संबंध सबको बड़े क्लियर हो गए, अनुभव हुआ गहराई से, सारी ही संबंध, उनका एक एक गुण के साथ कैसा कनेक्शन। और जब लास्ट में साजन सजने की बात आई थी, तो बहुत पहले हम लोग वर्कशॉप किया करते थे, तो एक भाई ने ऐसे वर्कशॉप में अपने अपने चिंतन शेयर करते हैं ना, तो उनसे पूछा गया कि भाई कैसे सजनी का संबंध अनुभव करते हैं आप, तो उन्होंने कहा मैं वतन में जाता हूं और वहां जाकर के मैं साड़ी पहन लेता हूं। तो सजनी की फीलिंग आती है। खैर, ये हंसी की बात है, लेकिन सत्य तो यही है जैसे बहन जी ने कहा। बाबा की एक मुरली, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि जब तक तुम अपने आप को शक्ति नहीं समझोगे, तब तक शिव से शक्तियां नहीं ले सकोगे। इसीलिए पुरुष स्त्री, ये तो खैर तन की बात है, हमारे लिए तो बहुत पीछे छूट गए ये, हम सब शक्तियां हैं। और बाबा कहते हैं कि सब सजनियां हो, पार्वतियां हो, सीताएं हो। भक्ति में भी एक बहुत अच्छी सी बात आती है, मीरा जी किसी से मिलने गई थी, किसी संत से, और संत जी के द्वार पे जो द्वारपाल बैठा था वो अंदर गया और उसने कहा कि आपसे मीरा मिलने आई है। बहुत बड़े संत थे, तो संत ने कहलवा भेजा कि उनसे कह दो कि मैं किसी नारी से नहीं मिलता, किसी स्त्री से नहीं मिलता। तो मीरा को जब आके उन्होंने बताया, तो मीरा ने वापस से संदेश भिजवाया लिख के, उन्होंने कहा कि मैंने तो सुन रखा था कि सारे संसार में केवल एक ही पुरुष है और वो परमात्मा है, बाकी सब स्त्रियां हैं, शक्तियां हैं, सजनियां हैं, ये दूसरा पुरुष कौन है जो इस संसार में आ गया। तो भक्ति में भी इतनी सुंदर भावनाएं रही हैं और इतना कनेक्शन रहा है, तो हम भी बाबा से ऐसा कनेक्शन जोड़ें। एक बार पुनः बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सुमन बहन जी का। एक हाथ से दो दिन आप बिल्कुल पीछे, पर्दे के पीछे रह के सारा ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि डबल फॉरेनर्स का भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो टोटल आप मैनेज करती यहां से हेडक्वार्टर से। तो दो दिन की रिट्रीट उनकी भी सैटरडे संडे यही पड़ा था, तो इसीलिए दो दिन आप सुबह शाम बिजी थी, लेकिन सारा मैनेजमेंट आप कर रहे थे, तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद योग के पश्चात आप सभी दादी जानकी पार्क में पहुंचेंगे फ्रेश होकर के, वहां आपके लिए पिकनिक प्लेट की भी व्यवस्था है, तो यदि चाय पीने की जरूरत है तो, अदरवाइज फ्रूट पिकनिक है वहां पे, तो आप लोग सीधे वहां पे पहुंचेंगे, फिर अनुभवों की लेन देन हम सब खुले दादी जानकी पार्क में करेंगे। ठीक है, चलिए। धूप में बैठ करके, वो भी दादी जानकी की गोद में। चलिए प्यारे बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे 3 मिनट याद के साथ।